ويقول الذين آمنوا اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اہا اولائے کیا یہ ہیں وہ لوگ الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم جو اللہ کی قسمیں کھاتے تھے اتنی پکی قسمیں کیا کھاتے تھے انہم کے بے شک وہ لمعکم تمہارے ساتھ ہیں یہ کیا وہ ہیں اب یہ کس کے ساتھ کی بات ہو رہی ہے یعنی ایمان والے پکے کہیں گے ان کو دیکھ کے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ ہی وہ لوگ ہیں جو یہودیوں اور نصارہ اور ان کے پاس جاتے تھے اور کافروں کے پاس جاتے تھے اور ان کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں جیسے عبداللہ بن ابئی ان کو بیچ میں میسیجنگ کرتا تھا کہ تم فکر نہ کرو بنو قینقہ کو یقین دلاتا تھا ہم تمہارے ساتھ ہیں تم گیو اپ نہ کرنا بنو نذیر کو ان کو یہ منافقین جو تھے ان کو یقین دلاتے تھے قسمیں کھا کھا کے کہ فکر نہ کرو اگر مسلمانوں نے حملہ کیا ہم تمہاری طرف سے لڑیں گے تم بس ڈٹے رہو جمے رہو تو ان کے تو ڈبل فیس ہیں تو اس وقت پھر مسلمانوں کے سامنے جب یہ آئیں گے ایکسپوز ہو جائیں گے تو وہ حیران ہو کے کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جو ان کے پاس جا جا کے ایسے قسمیں کھاتے تھے آج ان کا دیکھو کیا ہوا اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان حیران ہو کے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب یہ ایکسپوز ہوں گے کہ یہ تو کہتے تھے انہم کے بے شک وہ لمعکم تمہارے ساتھ ہیں یعنی یہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان کے یہ کردار ہے کہ یہ ان کے ساتھ جا کے ان کو خفیہ پیغام دیتے ہیں حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین ان کے تو سارے ہی عمل ضائع ہو گئے سب عمل کون سے عمل جو نیکیاں جو دینداری کے کام کبھی یہ نمازیں پڑھتے تھے کبھی یہ کچھ چیریٹی بھی تھوڑی بہت کر دیتے تھے یا کوئی بھی اور ایسا کام وہ سب ضائع ہو گیا کیوں ضائع ہو گیا نیکی تو کوئی کے تو کام تھے جماعت سے نماز پڑھتے تھے اس لیے کہ ان کاموں میں اخلاص نہیں تھا وہ اللہ کے لیے نہیں تھے نفاق تھا اندر جب کھوٹ اندر ہوتا ہے نا تو پھر انسان چاہے کتنے بھی نیکی کے بظاہر کام کر لے کتنی بھی دینداری دکھائے وہ سب نمائشی ہے اوپر اوپر کی ہے اس سے انسان خود کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں پتہ نہیں نعوذ باللہ اللہ کو بھی دھوکہ دے دوں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ نیت کا اخلاص دیکھتا ہے ظاہر کا عمل نہیں دیکھتا کہ ظاہر کے عمل کتنے خوبصورت ہیں مثلا لوگوں کو کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی لیکن ان کی یہ نیکی بھی کام نہیں آئی جماعت سے نماز پڑھنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے مسجدوں میں آتے تھے لیکن صرف اس لیے کہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں اور اپنے ساتھ سمجھیں بعض دفعہ جہاد میں بھی شریک ہونے کے لیے نکلے ہیں مسلمانوں کے ساتھ صرف اس لیے کہ یہ بھی ہمیں اپنا ہی سمجھتے رہے تو یہ عمل ضائع ہو جاتے ہیں جب ان میں کھوٹ ہوتا ہے جب اندر سے نیت خالص نہ ہو تو آپ چاہے قرآن پڑھ رہے ہیں چاہے نمازیں پڑھ رہے ہیں چاہے آپ کتنے ہی ٹیسٹ دے رہے ہیں ڈگریاں لے رہے ہیں سرٹیفکیٹ آپ کے ہو رہے ہیں کچھ بھی اس کا فائدہ نہیں ہے وہ قبول ہی نہیں ہے فاصبحوا خاسرین تو وہ ہو گئے خسارہ پانے والے نماز بھی گئی روزے بھی گئے صدقہ بھی یا سب زیرو ساری زندگی انہوں نے کوشش بھی کی مگر اینڈ میں کیا ہے خسارہ کیا مطلب ہے ان کو نہیں کوشش لگتی ہوگی کوشش کرنی پڑتی تھی نا ان کو لیکن دیکھیں کوشش وہ بھی کر رہا ہے جو ایک ایمان والا ہے اور کوشش منافق بھی کر رہا ہے دونوں کی کوششوں کا انجام مختلف ہے کس وجہ سے کہ جو کھوٹ ہے دل کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اب یہ بہت ہی اہم بات آ رہی ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے اور ایمان جو سچے ایمان والے ہیں ان کو بھی انکریجمنٹ ہے اور جو لوگ اللہ کے دین سے منہ موڑنے والے ہیں ان کو بھی ان کے اوقات بتا دی گئی کہ آئیے اللہ دینا منو ایمان والو मैयर कद्दम इनको। अच्छा अब कहलाते तो मुनाफिक भी ईमान वाले ही थे सारे, सबकी बात आ रही। या अय्युल्लज़ीना नाफ़क़ू तो नहीं, या अय्युल्लज़ीना आमनू में सब ईमान वाले, जिसका ईमान कम है ज्यादा है कमजोर है मजबूत है, या जो ईमान का दावा जो भी कर रहा है। मैयर्तद्दा मिनकुम, जो भी तुम में से मुर्तद हो जाए, अनदीनी ही अपने दीन से फिर जाए, तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं है। फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, अल्लाह ताला कोई और कौम अनकरीब जल्दी कोई और कौम ले आएगा। यानी तुम ये ना समझना कि अल्लाह ताला के दीन को कोई तुम्हारी ही जरूरत है, ये ना कभी ध्यान में लाना। पता नहीं अल्लाह ताला ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, नमाज के लिए आओ, ये करो, ईमान वालों के साथ दोस्तियां करो, ऐसा करो और ऐसा ना करो, तो पता नहीं उसको हमारी कितनी की जरूरत है। नाउजु बिल्ला, ये दिमाग से निकाल देना। अल्लाह के दीन को किसी की भी जरूरत नहीं है। वो अगर तुम सारे फिर भी जाते हो उसके दीन से, तो वो कोई और कौन ले आएगा। उसका दीन अफराद का मोहताज नहीं है, अफराद उसके दीन के मोहताज है। अगर मुझे या आपको आज कुरान पाक सीखने की कोई तौफीक मिली है ना, या कोई किसी स्केल पर भी कुछ भी काम करने का हमें चांस मिला है, थोड़ा या ज्यादा, इस पे कभी रोना ना रोए। आए बड़ा काम दे दिया, आए बहुत करना पड़ता है, मैं तो बड़ी ही बस मुश्किल में, जैसे मेरी जान फंसी भी है, बस मैं तो सारा दिन यही काम बस इसमें ही है लगी हुई हूँ, ये हो रहा है। इसके ऊपर हाय वाय ना करें, इसके ऊपर रोने ना रोए, लोगों को बता बता के हमदर्दियां ना लें, कि जैसे कोई कहे कि कितनी बेचारी मुसीबत में फंस गई। नहीं, इस नेमत पे अल्लाह ताला का इस कदर शुक्र अदा करें, इसलिए कि उसके पास अफराद की कमी नहीं है। वो तो कहता है वलिल्लाहि जुनूदुस समावाती वल अर्द, उसके लिए तो लश्कर है आसमानों के और जमीन के। हम तो सिर्फ इंसान है ना, उसके तो लश्कर हैं आसमानों जमीन में, जिन लश्करों की कोई गिनती नहीं है, और हम नहीं जानते कि कहाँ कहाँ क्या क्या उसका लश्कर है। उसके काम करने वाले तो बहुत है, ये तो हम ही शुक्र अदा करें कि उसने हमें चुन लिया, किसी काबिल कर दिया, कि हम उसके दीन में जरा अपना कोई हिस्सा डाल सके। तो फिक्र ना करें, ऐसे मुर्तद लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि पता नहीं हमारे ऊपर ही दीन खड़ा हुआ है, तो अल्लाह ताला इनकी जगह पर नए लोग ले आएगा, जिनका किरदार इनके जैसा नहीं होगा। वो कैसे होंगे, उनकी आगे खसूसियात आ रही हैं, वो इनके जैसे नहीं होंगे दीन को छोड़ छोड़ के भागने वाले, वो उनके जैसे नहीं होंगे बेवफाइयां करने वाले, उनके जैसे नहीं होंगे कि उधर भी जाके बनाए इधर भी बना के रखे, आए हम कहीं ये ना हो जाए कि हमारे ऊपर कोई मुश्किल आ जाए, वो ऐसे नहीं होंगे, उनके किरदार में मुनाफकत नहीं होगी। या देखिए इर्तिदाद एक तो ये भी होता है ना कि कोई दीन से ही फिर जाए, नऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए इससे कि इस्लाम से फिर के कुछ और बन जाए, क्रिश्चियन बन जाए, यहूदी तो बनते ही बन ही नहीं सकते, मगर कोई कुछ और भी दीन इख्तियार कर ले। सिर्फ वो नहीं होते, बल्कि बाज लोग मुंह से तो नहीं कहते लेकिन वो मुर्तद हो चुके होते हैं अपने दीन से, फिर चुके होते हैं अपने दीन से, सारा का सारा छोड़ दिया होता है उन्होंने दीन को, वो दीन से एलर्जिक होते हैं, उनका नाम सिर्फ मुसलमानों वाला रह चुका होता है बस, वो भी उनका बस चले तो उसको भी बदल डालें, ये भी इर्तदाद है। तो जो मुर्तद होना चाहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली दे दी गई कि आप ये ना समझना कि जो लोग दीन से फिर जाएंगे तो फिर क्या होगा, नहीं, अल्लाह औरों को ले आएगा। मुसलमानों को भी कह दी, बता दिया गया, उनके लिए भी इंकरेजमेंट है, जिनके अंदर ये खसूसियात हैं जो आगे आ रही हैं, ये वो लोग हैं जो इनके मुकाबले में, यानी अल्लाह ताला ने एक तरफ मुर्तदीन की बात की और एक तरफ अपने वफादारों की बात की, कि अल्लाह वफादारों को ले आएगा, अल्लाह के पास तो कमी नहीं है। तो मुनाफिकीन के मुकाबले में, इर्तदाद करने वालों के मुकाबले में, फिर अल्लाह वाकई सहाबा कराम को खड़ा करता है, उनकी वो जो जमात थी वो अव्वलीन मिसदाक है इन सिफात का, यानी उनमें सबसे पहले ये सिफात पाई जाती, और जो आगे आने वाली है, और कयामत तक के लिए जिन लोगों में भी ये सिफात पाई जाएंगी, वो हैं अल्लाह के महबूब, वो हैं अल्लाह के प्यारे। और ये सिर्फ कोई एक शख्सियत की बात नहीं है, जो भी लोग ऐसे किरदार को अपनाएंगे। और यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया कि अल्लाह ताला ने एक पेशीन गोई दे दी कुरान पाक में, कि एक इर्तेदाद का भी मरहला आएगा, एक वक्त आएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ल मौत से ये शुरू हो गया था कि बाज लोग मुर्तद होने शुरू हो गए थे, बाज कबाइल हो गए थे मुर्तद, ठीक है, बाज ने जकात से इनकार कर दिया, कहते हमने कुछ सारा कुछ मानेंगे, जकात सिर्फ हमने नहीं देनी। हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फिर उनसे जंग की थी। एक वो थे जिन्होंने फिर झूठे नबियों ने के पीछे ईमान रखा था, उनकी नबूवत के पीछे चल पड़े थे, जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब था और भी कुछ लोग थे जिन्होंने नबूवत का दावा कर दिया, वो उनके पीछे चल पड़े, वो भी एक इर्तदाद था। और बाज ऐसे थे तीसरी किस्म के, वो लोग थे जिनको वैसे ही इस्लाम उन्होंने छोड़ दिया था। तो ऐसे लोगों की तरफ इशारा है कि ऐसा भी वक्त आएगा, लेकिन इसमें परेशानी की बात नहीं, दूसरी तरफ वो लोग भी होंगे, अल्लाह ऐसे लोगों को ले आएगा जिनका किरदार बहुत डिफरेंट है। उनका किरदार क्या है? और ये बहुत अहम बात है जो यहाँ पे बयान की गई, इसलिए कि एक ये मुकाबला हो रहा है दो ग्रुप्स का। एक वो है जो इर्तदाद वाले, चाहे जुबान से बोल के करते हैं या उनकी जिंदगियों में ही इर्तदाद है, यानी जिंदगियां फिर गई हुई है इस्लाम से। दूसरी तरफ अल्लाह वाली जमात है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वालिटीज हैं इनको जरा गौर से सुनिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, पहली उनकी क्वालिटी कि अल्लाह ऐसे मुर्तदीन के पीछे ऐसी कौम को ले आएगा, ऐसे लोगों को ले आएगा, युहिब्बुहुम, वो मोहब्बत करेगा उनसे जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता होगा, अल्लाह ऐसे लोगों को ले आएगा। यानी सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत की बात की, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा। अल्लाह ताला इन बेवफाओं के मुकाबले में ऐसी शान वाली एक कौम पैदा करेगा जिनको अल्लाह अपना महबूब बनाए हुए होगा, वो मुर्तद नहीं होंगे कभी, अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है। अब देखें, एक तो बात समझ आती है कि बंदा अल्लाह से मोहब्बत करे, क्योंकि इंसान है, अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है, अल्लाह ने उसको सब कुछ दिया है, अल्लाह ताला के एहसानात है उसके ऊपर इतने हैं कि जिनको वो गिन भी नहीं सकता। वो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करे वो तो समझ आता है, वो तो बात होनी भी चाहिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सारी कायनात का मालिक है, वो एक जर्रे से मोहब्बत करे, ये है जो बहुत बड़ी बात है। मसलन आप अब ये देखें, कोई भी मिसाल अल्लाह ताला के साथ तो नहीं फिट हो सकती, मैं सिर्फ समझाने के लिए एक बात बता रही हूँ कि मसलन है कि एक मुल्क का बादशाह है, वो किसी जगह जाता है तो वहां पे एक डोर कीपर है, दरवाजा बस वो खोलता है और बादशाह उसको कहता है कि तुम फलां फलां हो, मुझे तुम्हारा पता है और तुम बहुत अच्छे, तुम मेरी नजरों के अंदर तुम्हारा बड़ा मकाम है और मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है। या एक जेनेटर है, सफाई करने वाला है, टॉयलेट और बाथरूम साफ करता है, उसको बादशाह ऐसे कह दे, वो बादशाह से मोहब्बत करे वो तो ठीक समझ आती है, भाई वो तो इतना वाकई इस काबिल है कि वो बादशाह है, लेकिन जब बादशाह उसको कहता है अपनी तमाम राया में से एक छोटे से बंदे को जिसका कोई हैसियत माशरे में नहीं समझी जाती, उसको जब वो कहेगा तो सोचें वो कितनी बड़ी बात होगी। इसी तरह इंसान की कोई हैसियत नहीं है इस कायनात में, बहुत ही छोटी और हल्की चीज है ये, जो हम अपने आप को समझते ना इंसान है बहुत ही बड़ी, पता नहीं मैं क्या अफलातून हूं, मैं क्या चीज हूं, नहीं, इंसान कुछ भी नहीं है, बहुत कमजोर, बहुत छोटी चीज है अल्लाह ताला की इतनी बड़ी कायनात के अंदर। और अल्लाह ताला इंसानों में से कुछ इंसानों से कहे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये कितनी बड़ी बात है। कायनात का मालिक, खालिक, चलाने वाला, उसको सस्टेन करने वाला, कायम रखने वाला, उसकी तदबीर करने वाला, वो जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा रहने वाला, वो जिस पे कोई जवाल नहीं, वो जो शानों वाला है, करम वाला है, बुजुर्गी वाला है, बड़ाई वाला है, जिस पे कोई जोफ नहीं, जो हर आला सिफत का मालिक है, वो एक छोटे से जर्रे को कह रहा है कि वो उससे मोहब्बत करे करता है, तो सोचिए जरा कि वो कितनी बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसी है फिर? वो ऐसी है जैसी उसकी शान है, अपनी शान के मुताबिक अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदे को अपनी इताअत में मशगूल कर लेता है, उसको गुनाहों से बचाता है, ये अलामत है अल्लाह की मोहब्बत की। तो वो भी फिर उसके बाद उनकी बात आई, पहले अल्लाह ताला की बात आई कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, उसके बाद आई वह युहिब्बूनहू, और वो मोहब्बत करेंगे उससे, ऐसी कौम होगी। और सहाबा ने इसको साबित किया ना, अल्लाह ने उनसे मोहब्बत की और वो अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करने वाले थे कि अल्लाह ताला के आगे उन्होंने हर चीज को कुर्बान कर दिया, कोई चीज उनके नजदीक कोई वैल्यू नहीं रखती थी अल्लाह के नाम के आगे, अल्लाह के नाम पे मर मिटने वाले थे। देखें ये बोलना बड़ा आसान है, ये कहना बहुत आसान है, ये तो मेरे से और आपसे भी बुलवा लें तो हम भी कह देंगे हम अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व माहिया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम तो लहक लहक के कहने को तैयार हैं, मेरा तो जीना मरना जी अल्लाह के लिए, मेरा तो ये अल्लाह के लिए मेरा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम आते हैं ना, तो ये बिल्कुल सच नहीं होता, ये सिर्फ हमारी जुबानों की बातें रह जाती हैं। मगर सहाबा के साथ ऐसा नहीं था, उनकी सिर्फ जुबानों की बातें नहीं थी, वो बातें नहीं किया करते थे, वो करके दिखाते थे। उन्होंने अपने घर छोड़े इस दीन के लिए, अपने घर वालों को छोड़ा इस दीन के लिए, अपने काम कारोबार छोड़े इस दीन के लिए, सारी अपनी लाइफ छोड़ के, अपनी जिंदगी चलती हुई प्रॉस्परस लाइफ, खुशहाल जिंदगियां छोड़ के एक नई जगह पे एज रेफ्यूजीज, एज इमिग्रेंट्स वहां पे पहुंचे हैं। और रेफ्यूजी की क्या हैसियत होती है बताएं, रेफ्यूजी ही रहता है ना, किसी और मुल्क में आ गया, उसने पनाह ली है वहां पे, पनाह ली उन्होंने जाके मदीना के अंदर, जबकि उनका अपना वतन मौजूद था। ये किस लिए? सिर्फ एक अल्लाह के लिए। उन्होंने अपनी हर चीज कुर्बान करके दिखाई है, प्रैक्टिकली दिखाई, फिर वहां पे भी बैठ नहीं गए, उसके बाद भी जाने लगा दी अपनी, दिखाया कि अल्लाह की मोहब्बत कैसी होती है, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं ना उनकी जिंदगियां कैसी होती हैं। आज दावे मुझसे आपसे कोई बहुत करा ले, हम कहेंगे हमें अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, मगर ये बातें ही बातें हैं, यकीन जाने हमारी जिंदगियां उसका आईना नहीं है, हमारी जिंदगियां वो जो हमारी बातें हैं ना उसका साथ नहीं देती, नहीं है वैसी। और हम अपने दिलों से भी पूछे ना, तो वाकई हमारे दिल भी गवाही देंगे कि ऐसा ही है, कि हमारी बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, काम कुछ नहीं। जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना, देखिए वो फिर ये भी लंबी एक वो बात है, अब इसके अंदर जाएंगे ना तो उसके ऊपर तो किताबें लिखी हुई हैं। जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी जिंदगियां कैसी होती हैं, वो एक एक उनके अंदर से बात आपसे ये शेयर करती हूँ कि वो अल्लाह के फैसलों पे राजी रहने वाले होते हैं, उनके साथ कुछ भी हो जाए शिकायत नहीं अल्लाह से। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा, वो कोई शिकायत नहीं, अल्लाह हाय सारी कौम के अंदर एक मैं ईमान लाने वाला, मुझे ये आग में डाल रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहा, इनको डालने दे रहा है या आग जला रहे हैं, इन्होंने सारा इंतजाम कर लिया है, मुझे पकड़ लिया है, अल्लाह कोई मदद ही नहीं आ रही तेरी, ये क्या बात हुई? तो फौरन गिले शिकवे करते, दो नमाजें पढ़ के ही हमें ये होता है कि अब हमारे साथ कुछ अच्छा ही होना चाहिए, ये क्या हो गया, मैं तो नमाजें पढ़ती थी, मैं तो कुरान पढ़ती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी जिंदगी में ये मुश्किल क्यों आई, ये प्रॉब्लम क्यों आया, क्या मैं ही रह गई हूँ? फौरन हमारी हम उन बातों को याद करने लगते हैं जो हमने अल्लाह के लिए की, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ, दुनिया तो ये भी नहीं करती, फिर मेरे ऊपर क्यों मुसीबत आ गई? यानी अब अल्लाह ताला को तो मेरे पूछना चाहिए था बहुत ज्यादा, कि मैं तो बड़ा कारनामा सारा अंजाम दे रही हूँ। गोया हमें ऐसे लगता है हम बड़ा एहसान कर रहे हैं इस दीन के साथ कि हमने इसको अपना लिया, तो अल्लाह ताला को तो हमारी बड़ी फिर केयर करनी चाहिए थी, ये भी उसने हमारे ऊपर क्या मुसीबत क्यों आने दी। फरिश्ता आ गया कि मेरी मदद की जरूरत है, तो को कहते हैं नहीं कोई मदद की जरूरत नहीं है मुझे, किसी भी नहीं मदद की जरूरत, ये अल्लाह ताला अगर मुझे जलाने पे राजी तो मैं जलने पे राजी। ये होते हैं मोहब्बत करने वाले, तो ये मोहब्बत की एक अलामत है इंसान को मकाम, ये भी एक मकाम है, ये भी एक दर्जा है, हमें दर्जे भी है ना सीढ़ियां समझ लें, कभी जिंदगी रही तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे कभी। ये भी बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, अल्लाह ताला की जो बंदों से मोहब्बत की अलामत क्या है, कैसे पता चलेगा कि इस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, वो बंदा कैसा होगा, कोई हवाई मखलूक तो नहीं है वो, कोई ऐसा तो कोई ऐसी एलियन टाइप चीज तो नहीं है, या कोई बड़ सफेद दाढ़ी है, ये है वो है, वो तो ये है बंदा जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, ऐसी बात नहीं है, बड़े इसके स्टेप्स हैं। वो फिर बंदा जो होता है ना वो कैसा बन जाता है, उसको मकामे रजा मिल जाता है, खुशी हो या गम वो अल्लाह के साथ राजी, हर हाल में राजी, जो मुसीबत आए उसमें भी राजी। और अल्लाह ताला जो हदीस में आता है ना, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसको आजमा लेता है, उसको किसी मुसीबत में मुब्तला करता है, उसको आजमा के देखता है ना, जाहिर है टेस्ट नहीं होगा पता कैसे चलेगा, ये उसके ऊपर आजमाइश आती है। जैसा जब बिलाल को जब टॉर्चर किया जाता था तो लोग कहते थे कि कह दो तुम इनके बुतों का नाम ले दो, तुम्हें तुम्हारी जान छोड़ दें, क्या फरमाते थे कि जब तुम कोई बर्तन खरीदते हो बाजार से तो उसको ठोक बजा के देखते हो ना कि पक्का है कि नहीं है, उस जमाने में वो मिट्टी के बर्तन होते थे, ये पक्का है कि नहीं इसको ठोक ठोक के देखते हैं, तो क्या मेरा रब मुझे ठोक बजा के नहीं देखेगा कि मैं असली हूं कि नहीं। तो कितनी हमारे अंदर रजा होती है, ये बुलंद मकाम है, बहुत ऊपर का मकाम है, अल्लाह की कजा के ऊपर उसकी तकदीर पे राजी हो जाना, तो ये मकाम ऐसे ही नहीं मिलते। तो ऐसा इंसान जो अल्लाह की रजा पा लेता है वो तो समझ ले दुनिया की जन्नत में रहता है, क्योंकि वो हर हाल में ही राजी है, लोग परेशान हैं, पैसा कमा के भी परेशान, करियर बना के भी परेशान, बड़े बड़े घर लेके भी उनके टेंशन नहीं खत्म होती, उनके डिप्रेशन नहीं खत्म होते, वो राजी है। तो सच्ची मोहब्बत जो है ना, या दोस्ती इंसान की, या मोहब्बत कह लें अल्लाह के साथ, वो ये है कि जो महबूब की तरफ से पहुंचे उसको भी ये सोचे कि ये भी एक बहाना है, महबूब ने मुझे याद तो रखा। इस तरह से लोग देखते हैं जो इस मकाम पे पहुंचते हैं कि महबूब ने मुझे याद तो किया ना, चलो कोई मुसीबत भेज के याद किया, मैं उसकी याद में तो हूं ना, अल्लाह हू अकबर। फिर वो इंसान ऐसा हो जाता है कि उसको पता चलने लगता है, अल्लाह ताला जब उससे मोहब्बत करता है ना तो अल्लाह की तरफ उसके दिल में कशिश पैदा होती है, वो अल्लाह की तरफ दौड़ता है, उसके कामों की तरफ, उसके जिक्र की तरफ, खैर की तरफ, नेकियों की तरफ, भलाइयों की तरफ। तो बहुत सारी और भी अलामत हैं कि कैसे पता चले, अब इतना वक्त नहीं है ना कि हम इस चीज को डिस्कस करें, अब बहुत सारी हमें अलामात कुराने पाक से भी पता चलती है कि कैसे पता चलेगा अल्लाह ताला किससे मोहब्बत कर रहा है। जाहिर है कोई अब आके तो वही तो उतरनी नहीं है जिसने आके पता चले कि अल्लाह किससे मोहब्बत करता है, और जो अलामात है वो आप कुराने पाक में देख सकते हैं कि अल्लाह ताला इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, युहिब्बुल मुतहिरीन, युहिब्बुत तवाबीन, युहिब्बुस साबिरीन, कितनी बातें बताई गई है ना हमें, अल्लाह मुकसितीन हमने वो पढ़ा था, इंसाफ करने वालों से, तवक्कुल करने वालों से, सबर करने वालों से, एहसान करने वालों से, तकवा करने वालों, तकवा वालों से, पाक साफ रहने वालों से, तौबा करने वालों से, इनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, अपने अंदर वो सिफात हम पैदा करेंगे। अगर हमें अल्लाह की मोहब्बत चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि देखें, हम ये तो कह सकते हैं हमें अल्लाह तुझसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, हम तो इस काबिल नहीं है। हम ये मांग सकते हैं, अल्लाह हमें इस काबिल बना कि तू हमसे मोहब्बत करे। हमारे अंदर ये सिफात कहाँ है, ना सबर है, ना उस तरह का तकवा है, ना अल्लाह के ऊपर तवक्कुल है, ना एहसान की रविश है। एहसान भी क्या होता है, कोई नेकी कर रहा है तो आप उससे बढ़ के नेकी उसके साथ करें, कोई बुराई कर रहा है तो उसका जवाब भी नेकी के साथ दें। ये होता है एहसान का दर्जा। हमारे अंदर कहाँ इतने हौसले हैं कि हम इस तरह इतने हो जाएं कि भाई अच्छा तुम हमारे साथ बुरा भी करोगे तो तब भी हम तुम्हारे साथ अच्छा ही करेंगे, और जो अच्छा करे उसको उतना ही जवाब देते हैं, उसे बढ़ के नहीं देते। जिस जो अच्छा नहीं करे उसके साथ भी अच्छा, जो अच्छा करे उसके साथ उससे ज्यादा अच्छा, ये होता है फिर एहसान। किसी की मजबूरी से फायदा ना उठाना, ये होता है एहसान। किसी के लिए भलाई की सिफारिश कर देना, ये होता है एहसान। किसी का बिगड़ा हुआ काम बना देना, ये होता है एहसान। किसी को कर्जा दिया हुआ, कर्जे की वसूली में आसानी कर देना कि वो मजबूर है, ये होता है एहसान। किसी की जरूरत को अपनी जरूरत पे तरजीह दे देना, ये होता है एहसान। ये कहाँ हमसे होते हैं। तौबा भी वो वाली है कि जो तौबा इस्तगफार की तस्बीहां ही हैं और कुछ भी नहीं। तो बात तो ये है कि सिर्फ जुबान के ऊपर मोहब्बत के दावे ना हो, बल्कि जब फरिश्ते जान निकालने के लिए आए तो इस दिल के ऊपर सिर्फ अल्लाह का नाम लिखा हो, तब पता चले कि हाँ ये सच्चा मुहिब है, मुहिब मोहब्बत करने वाला। तो सच्चे मुहिब बन के दिखाए ना, ये दावों को छोड़े, बातों को छोड़े। बातें तो मुनाफिकीन भी बहुत करते थे, बातों उसमें कुछ नहीं रखा। तो अल्लाह मोहब्बत करता है उनसे, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को पहले लाके उसको ऑनर दिया कि ना, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह का मोहब्बत करना। तो अल्लाह ताला ने ऐसे इंसानों को ऑनर बख्शा है, एजाज दिया कि देखो जी अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह से तो बड़ी मखलूक मोहब्बत करती होगी, चरिंद परिंद क्या क्या चीजें अल्लाह से मोहब्बत करने वाली है, अल्लाह की तस्बीह करने वाली है। अल्लाह किसी का नाम ले ले कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, वो बड़ी बात है। अल्लाह हू अकबर। तो युहिब्बूना हू, वो मोहब्बत करते होंगे उससे, अल्लाह ऐसी कौम लाएगा। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, नरम होंगे वो मोमिनों पे, यानी ये ऐसे लोग हैं अल्लाह के जो महबूब हैं, वो ऐसे हैं जो ईमान वालों के साथ नरम है, नरम दिल, नरम बात करने वाले, नरम मामला करने वाले, शफीक, मेहरबान। और आपको पता है ना कि कौन है जिसके ऊपर जहन्नुम को अल्लाह ने हराम कर दिया, और जहन्नुम उस पे हराम, वो जहन्नुम पे हराम, जो करीब है लोगों के करीब, नरम दिल है, आजिज मिजाज है, इजी गोइंग है वो। तो अब ये सिफात जिस इंसान के अंदर हो, वो है कि जो अदिल्लतिन अलल मुमिनीन। हमारा हाल क्या होता है, हम ईमान वालों के साथ जो मुसलमान है उनके साथ सख्त होते हैं, और जो काफिर हैं उनको देखते ही हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। उनके साथ बड़ी प्यार मोहब्बत और अखलाक के साथ बोलते हैं, और जो ही कोई अपने को मुसलमान आ जाएंगे, वो चेहरा तन जाएगा और आवाज में भी एक वो हो जाएगा। हम सोचते हैं ना कि शायद मैं बड़ी बेगम साहिबा तब बनूंगी जिस वक्त मैं बड़ी रोबदार हूँ, और मैं किसी को खातिर में ही ना लाऊं कि मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। तो जब मैं ऐसे बनूंगी ना, तो फिर ही मैं कोई बड़ी शान वाली, मेरी शान बढ़ेगी। हालांकि ऐसे नहीं है, वो तो अदिल्लतिन अलल मुमिनीन है। लेकिन कैसे, हजरत उमर का वाकया याद आता है ना, कि एक दिन चिलचिलाती धूप है, सख्त गर्मी, दोपहर का वक्त, भागे जा रहे हैं। किसी ने कहा आप किधर जा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन? तो कहते हैं कि बैतुल माल का एक ऊंट दौड़ गया तो उसको लेने जा रहा। तो वो कहने लगे आप किसी गुलाम को भेज देते हैं। कहते उमर से ज्यादा कौन बड़ा गुलाम होगा। इतनी आजिज मिजाजी, जब आजिज मिजाजी होती है ना तब नरमी आती है, जब अंदर तकब्बुर होता है तो अकड़ आती है उससे। तो वो नरम इसलिए कि उनके अंदर आजी है, और जो खुद कोई बड़ी चीज समझा जाता है वो नरम नहीं हो सकता, फिर वो सख्त हो जाता है, सख्त हो जाता है। इसीलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा मुर्दे जो होते हैं ना वो सख्त हो जाते हैं, वो अकड़ जाते हैं, जो जिंदा होता है वो तो नरम होता है। तो वाकई जिनके दिल जिंदा हों वो नरम होते हैं, और जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं वो अकड़े होते हैं। अकड़े भी नहीं रहना, इसमें कोई शान नहीं किसी की बढ़ती। हाँ, आपकी बेगम साहबा कहलाने में, और लोग आपके सामने इस तरह थर थर कांपे, और लोग आपको बड़ी चीजें समझें, और वो ये इनकी क्वालिटी नहीं है, औरों की हो सकती है मगर इनकी नहीं है जिनसे अल्लाह मोहब्बत रखता है। अगर ऐसे बनना है ना तो नरम मिजाज बने, लोगों के लिए शफीक और मेहरबान बने। कोई आपको पावर हाथ में आ जाए ना तो अपने आप को बड़ी चीज समझ के लोगों को काटने को ना दौड़े। रवैये, जो तुरशी वाली रवैये, इनको छोड़ दें, इस जुबान की काट को छोड़ दीजिए, नरमी लाएं जुबान में। देखिए अल्लाह ने इसको कैसी चीज बनाया, नरम बनाया ना इसको, तभी तो ये मुड़ती है, घूमती है, ऊपर नीचे जाती आती है। अगर अल्लाह इसको अकड़ी हुई चीज बना देता तो ये अपना काम ना कर सकती। आपको अल्लाह ने जो जुबान दी है उसको ही नरम चीज बनाया, तो इसे नरम बात निकाली। नरमी जिसके पास होती है उसको अल्लाह ने बहुत बड़ी खैर दे दी, और नरमी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो काम होते हैं जो सख्ती से नहीं होते। तो ये नरम है, और खास तौर पे नरम किनके साथ, ईमान वालों के साथ नरम, इसलिए कि उनके साथ उनको आपस में अखुवत का रिश्ता है, जो ईमान का रिश्ता है वो उनको महसूस होता है। और आपको वो हदीस भी पता होगी कि जन्नत में वो लोग जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह होंगे, यानी नरम। ये चिड़ियों के दिल कैसे हैं, नरम, वो लोग जन्नत में दाखिल होंगे। सख्त और तुरशरूर हो लोग, ये तो जन्नत का भी माहौल खराब कर देंगे। जो यहाँ पे बदतमीजियां नहीं छोड़ते, जो यहाँ पे किसी का लिहाज नहीं करते, वो सोचते हम जुबानी चलाएंगे ना तो भी इस तरह से दूसरों को देखो, मेरे अभी ठीक करती हूँ इसको, ऐसी जुबान चलाएंगे कि दूसरों को डरा डरा के रखते हैं। सोचते हैं इस तरह हमारे काम बनते हैं, इस तरह मैं काम निकलवाती हूँ अपने, फिर देखती हूँ फिर मेरे सामने बोलेगी कैसे ये। तो ये आपकी कोई बड़ी बढ़ाई नहीं है इसके अंदर। तो सहाबा ऐसे थे, इतने नरम थे, और किसके लिए सख्त थे, इज्जतिन अल काफिरीन, काफरों के लिए सख्त थे। अब ये मतलब नहीं कि काफर को सामने आए तो आप उसके साथ तर तर शुरू हो जाएं और उसके साथ बदतमीजी शुरू कर दें, ये नहीं। मतलब है कि उनके साथ, उनके आगे कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं थे, उनके आगे लचक दिखाने वाले नहीं थे कि नरम पढ़ दें जी जैसे आप कहते हैं, और आपको नहीं पसंद कि हम नमाज पढ़े तो नहीं पढ़ते हम नमाज, जैसे आपको पसंद हो, ऐसे नहीं थे। आपको पता ना हजरत मुसअब बिन उमैर कितने वो लाडों में पले हुए थे, और उनकी माँ बहुत अमीर औरत थी, तो उनको इम्पोर्टेड खुशबू, इम्पोर्टेड कपड़े उस वक्त उस जमाने में उनके लिए आते थे जो वो पहनते थे। मुसअब बिन उमैर जिस गली से गुजर जाते थे तो लोगों को पता चलता था यहाँ से मुसअब गुजरा है। ऐसे थे वो सहाबी, इतने नाजो नाम में पाला था उनको उनकी माँ ने, और जिस वक्त मुसलमान हुए सब लग्जरीज उनसे ले ली गई, सब लग्जरीज। तो उनका ये हाल था जिस वक्त बदर हुई, और बदर में कैदी आए तो इनके भाई को एक अंसारी ने पकड़ा था, तो उसने चेन किया हुआ था, तो वहां से गुजरे तो अंसारी से कहते हैं कि इसको मजबूती से बांधना, इसकी माँ बहुत मालदार है, तुम्हें अच्छा इसका फिदिया देगी। मैंने ये नहीं कहा कि हाय मेरे भाई, हाय तेरा क्या हाल हो गया, इतने अरसे बाद तू मिला, मैं तो अभी तेरी जाके सिफारिश करता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो मेरी जरूर सिफारिश सुनेंगे, मैं तुझे अभी छोड़ाता हूँ, तू मेरा भाई है, मुझे, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ। अब उनके भाई कौन है, वो अंसारी, ये भाई नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये कुफर के ऊपर है, ये ईमान नहीं लेकर आया, उनको लिए ईमान वाला रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा था। हजरत साद बिन अबी वक्कास को देखें, माँ मुशरिका थी, तो फरमाते हैं कि मैं अपनी माँ के साथ इतनी मोहब्बत करता था और इतना उनका फरमा बरदार था, जब मुसलमान हुआ तो माँ कहने लगी असाद ये तूने कौन सा नया दीन ले ली अपना लिया, इस दीन को छोड़ दे वरना मैं भूख हड़ताल करके मर जाऊंगी। इसके बाद लोग तुझे कहेंगे माँ का कातिल, तुझे ये कह कह के शर्म दिलाया करेंगे सारी दुनिया के अंदर, यानी तू बदनाम हो गया कि ये है जो माँ का कातिल जा रहा है। तो मैंने अर्ज किया, माँ ऐसा ना कर, मैं ऐसी बातों से अपना दीन नहीं छोड़ूंगा। तो एक दिन और रात तो उसने खाना छोड़ दिया, और अगले दिन फिर मुझे मजबूर करने लगी। तो कहते हैं मैंने जब ये देखा तो मैंने साफ कह दिया है, माँ सुन, अल्लाह की कसम है, अगर तू 100 जाने रखती हो और एक एक जान करके मेरे सामने तेरी एक एक जान निकल जाए, तब भी मैं अपना दीन नहीं छोड़ूंगा। अब तेरी मर्जी है, तू खाना खा या ना खा। जब उसने ये बात सुनी तो फिर उसने खा लिया। मैं तो नहीं मरती ना इसके पीछे। फिर देख लें आपके हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे जब अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो उस वक्त क्या कहते हैं कि जंग में अपने बाप से कहते हैं कि जंग में कई दफा आप मेरी तलवार की जद में आए लेकिन मैंने आपको छोड़ दिया। तो बाप ने आगे से क्या जवाब दिया कि बेटा अगर तू मेरी तलवार की जद में आता तो मैं तुझे ना छोड़ता, क्योंकि उनकी मोहब्बतें, उनकी जीना मरना, उनकी नफरत, उनके दुश्मनी, उनका बोझ सिर्फ उसकी बुनियाद दीन था, ईमान था, कुछ और नहीं था। यानी इंसान के लिए एक वो लोग थे जिनके लिए ईमान सबसे बड़ी चीज है, ना कबीला, ना रिश्ता, ना दोस्तियां, और यही मयार होना चाहिए कि अलहुब फिल्लाह वल बुग्जु लिल्लाह, मेरी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए और मेरी नफरत भी, बुग्ज भी अल्लाह के, किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं है, जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मयार अपने ताल्लुकात का उन्होंने ये रखा हुआ था। तो क्यों ना अल्लाह को उनसे मोहब्बत हो। फिर हम तो कहते हैं अल्लाह का हुक्म टूटे तो टूटे, मेरे बच्चे का दिल ना टूट जाए। आई मेरे बच्चे का दिल कैसे टूट जाएगा, ये कैसे उसकी ख्वाहिश की कुर्बानी कैसे दूं। अल्लाह के दीन की कुर्बानी देने का कोई बात नहीं, अल्लाह को बाद में मना लेंगे, बच्चा नहीं बाद में मानेगा। अल्लाह अकबर। देखे अब अज़िल्लतिन्निन से एक और बात याद आई कि हजरत उमर के दरवाजे पर सुहैल बिन अमर थे, हारिस बिन हशाम, अबू सुफियान और कुरैश के बड़े बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग थे, मुलाकात के लिए वो इंतजार में थे। इतने में सुहैब रूमी आ गए, हजरत बिलाल आ गए, और बाज वो गुलाम जो बदर में शरीक हुए थे वो मुलाकात के लिए आ गए। हजरत उमर ने अपने दरबान को कह के हजरत बिलाल और उनके साथियों को फौरन मुलाकात के लिए अंदर बुलवा लिया। तो अबू सुफियान इस बात से बड़े गुस्से में आए कि इन गुलामों को तो मुलाकात के लिए फौरन बुला लिया और हम इंतजार में बैठे हैं, तो हमारी तरफ अभी तक नहीं उन्होंने तवज्जो दी। वो अभी इस किस्म की गुफ्तगू कर ही रहे थे कि सुहेल बिन अमर, जो अपने वक्त के बहुत दाना थे, बड़े समझदार आदमी थे, वो आके कहने लगे, है कौम अल्लाह की कसम मैंने तुम्हारे चेहरे पे गुस्से और नाराजगी की अलामत देखी है। देखो गुस्सा उमर बिन खत्ताब पे ना करो, अपने आप पे करो। कौम को हक की दावत दी गई, तुम्हें भी दी गई, इन कमजोर लोगों ने उस दावत को फौरन कबूल कर लिया, मगर तुमने ताखीर की और उनके मुकाबले में पीछे रह गए। अब जिस फजीलत यानी ईमान की वजह से ये फुकरा तुम लोगों पर सबकत कर चुके हैं, इसकी वजह से आज तुम इस दरवाजे पर पहले दाखिल होने से रह गए। ठीक है, तो जो फजीलत उनको मिली ना, उसकी वजह से वो आज आगे तुमसे चले गए। और फिर फरमाया इस फजीलत के जरिए ये फुकरा तुम पे जो सबकत ले जा चुके हैं ना, उसका तुमसे रह जाना तुम्हारे इस दरवाजे में दाखिल होने से ज्यादा अफसोसनाक होना चाहिए। तुम यानी इसमें मुकाबला कर रहे हो कि इनको पहले क्यों बुला लिया, हमें क्यों बाद में बुलाया, हम क्यों पीछे रह गए। तुम्हें ज्यादा अफसोस इस पे होना चाहिए कि ये तुमसे ईमान में सबकत ले गए। यहाँ पे बताने की बात ये है कि हजरत उमर जैसे, जिसको जिनको हम सोचते हैं कि वो बड़े सख्त थे, लेकिन वो कैसे ये गुलाम, ये वो लोग जो मुआशरे के कैसे पिसे हुए तबके समझे जाते थे। गुलाम आजाद भी हो जाता था ना, तो उसके बाद भी उसको वो मुआशरे में, उस मुआशरे में वो हैसियत नहीं दी जाती थी जो एक बॉर्न आजाद इंसान को मिलती थी, लेकिन ये लोग अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन थे, इतने नरम थे, इतने मुतवाजे थे, आजिज मिजाज थे मोमिनों के साथ। वो शेर है ना, वो हल्का यारा तो रेशम की तरह नरम, बज़्म हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन के। अपने प्यारे हैं, अपने ईमान वाले हैं तो रेशम की तरह नरम, और जहां पे काफिर हैं तो वहां पे फौलाद की तरह हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब कोई अपने दीन के ऊपर लचक नहीं है। दूसरे को भी पता होना चाहिए कि ये दीन के मामले में मेरी नहीं सुनेगा। समझ आई बात? इज्जत इन अलग काफिरी, उनके ऊपर रोब होना चाहिए दीन का आपके। ये एक वो जगह है जहां पे ये कोई बात नहीं इसको बर्दाश्त कर सकेगा। तो हमें लोग कैसे याद करेंगे बताएं? एक होती है ना, हर इंसान का एक इमेज होता है। सोचे मेरा और आपका इमेज क्या है? हम नरम है, सख्त हैं? किसके साथ नरम है और किसके साथ सख्त है? हमें कोई कह सकता है कि हम नरम मिजाज लोग हैं, इजी गोइंग है, या लोग हमसे डरते हैं, बात करने से डरते हैं, कॉल करने से डरते हैं, कहते हैं ये पीछे पड़ गई तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये खसूसियात लिखें और इनको अपने अंदर तलाश कीजिए। यहिबूनहू अदिल्लतिन अलल मुमिनीन आइज्जतिन अलल काफिरीन, लिखे इनके अंदर कि हाँ मेरे अंदर ये है या नहीं मेरे अंदर ये है, या किसी हद तक है, बस उतने ही नंबर मिलेंगे फिर आपको। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين